गण परिषद के सम्मुख गण की सेना में पद के लिए और धर्मस्थान के न्याय के लिए पृथ्वसेन का आवेदन उपेक्षित और स्थगित ही रहा। उसे जन और समाज में सब ओर अव्यवस्था, शैथिल्य, आशंका और संदेह दिखाई देता। स्वयं वह निराश और आशंकित था। पृथ्वसेन का पिता उत्साहित कर संतावना देता, पुत्र अवसर शीघ्र गति से चला आ रहा है, पुत्र अवसर शीघ्र गति से चला आ रहा है, उसे पकड़ने के लिए सतर्क और सानिध्य रहो। जानते हो, यवन देश के विद्वानों की युति है, उक्ति है, अवसर के देवता का मुख सन्मुख लटके केसों में छिपा रहता है। उसे पहचानना कठिन होता है, परंतु उसे वश में किया जा सकता है तो केवल अग्र केसों से पकड़कर। अवसर के सिर का पिछला भाग केशहीन होता है, सामने से निकल जाने पर भी पर उसे सभी पहचान लेते हैं, परंतु गंजे सिर पर हाथ मारने से कुछ हाथ नहीं आता। इसीलिए अवसर को पहचानने में सतर्कता और तत्परता आवश्यक है। पुत्र, यदि तुम साहस, शौर्य और प्रतिभा है तो तुम्हारे हाथ में धन है और इस संकट के समय तुम्हारा मूल्य आंका जाएगा। पुत्र, साहस करो, समर्थ लोगों का विश्वास प्राप्त करो, वृद्ध धर्मस्य और गणपति की सेवा में जाओ, सामंत ओक्रिस और सामंत इंद्रसेन से आत्मीयता स्थापित करो, पिता के आदेश से भी विश्वास और कृपा की भिक्षा मांगने जाना पृथ्वसेन के लिए साह न था, उससे उत्साह न हुआ। अभिजात समाज में उसे अपने प्रति सब ओर उपेक्षा और मौन और कायरतापूर्ण तिरस्कार दिखाई देता। कहीं भी जाना उसे अच्छा न लगता। समाज, अपानक, कहीं उसे उत्साह न होता। पान और नृत्य में उसकी रुचि न थी। समय बोझ जान पड़ने पर वह अपने प्रसाद के उद्यान में वृक्षों के नीचे बैठकर वायु से हिलते पत्तों को लक्ष्य बनाकर बाण से भेदता रहता, अथवा अपने परिपार्श्वक दास स्वंग से चतुरंग का खेल खेलता रहता। पृथ्वसेन संध्या समय यदि कभी मल्लिका अथवा वसुमित्रा के यहाँ जाता भी तो केवल दिव्या से मिलने की आशा से। उसे दुख से दुखी दिव्या के सामीप्य से उसे संतावना मिलती। जीवन का उसे एक ही मार्ग दिखाई देता। संसार में उसे मनुष्य जानकर जिसने अपनाया, अनेक बाधाओं की उपेक्षा कर अपना हृदय अर्पित किया, वही दिव्या उसका एकमात्र अवलंब थी, अपनी थी। उस दिव्या को लेकर वह किसी अज्ञात दिशा और देश में जाकर अपने लिए नया स्थान, नया समाज, नया संसार बसा ले। ऐसे देश में जहां वह अपने जन्म के लिए दंडित न हो, जहां वह अज्ञात कर्मों के फल से विवश न हो, जहां उसे कर्म करने का स्वतंत्र अवसर हो, जहां उसका पुरुषार्थ और प्रतिभा अकुलीन पिता की संतावना संतान होने के कारण व्यर्थ न जाए। सांगल में समाचार पहुंचा कि मध्य की सीमा की सेना केंद्र से पराजित हो गई थी। नगर में युद्ध का त्रास फैल गया। किसी भी स्थान और समय कहने वाले, एक मुख और सुनने वाले दो कान का संयोग हो जाने से युद्ध का प्रसंग आरंभ हो जाता। देवी मल्लिका ने भी संग्राम यज्ञ में धन की बलि देकर सहयोग दिया था। उसके चतुष्शाल में संगीत और नृत्य के मध्य में सैनिक कार्य और शासन से संबंध रखने वाले राजपुरुषों में युद्ध का प्रसंग आरंभ हो जाता। वक्ता और श्रोता हाथ में चषक लिए ललित कला का लास्य भूलकर युद्ध की विभीषिका के विवेचन में आत्म विस्मृत हो जाते। जीवन के आनंद से जीवन की रक्षा की चिंता अधिक प्रबल होती है। सुरा का प्रभाव पढ़ने पर विवेचना प्राय प्रलाप का रूप ले लेती है। पृथ्वीसेन सुनता और प्रलाप करने वालों की मूर्खता और कायरता से उद्विग्न हो जाता और मौन रह जाता। इंद्रदीप पर्याप्त सुरा पीकर वक्षस्थल फुलाकर कह रहा था, युद्ध द्विजों के भुजाबल से जीता जाता है। उसके लिए हृदय में तेज और सामर्थ्य की आवश्यकता है, जैसे सेनापति पुष्यमित्र। हमारे वृद्ध सेनापति विचारों की विश्रंखलता से जिनका सिर हिलता रहता है, क्या युद्ध करेंगे? इस साधारण जय पराजयों से क्या होता है? इन धमनियों में पौरव वंश का रक्त है, जिनके शौर्य के भय से यवनराज मिलिंद विजयी होकर भी राज्य न कर सके। प्रवज्ञा ग्रहण कर भिक्षा पात्र की शरण ली। अभी जिस दिन महाबलाधिकृत इंद्रदीप सैन्य संचालन करेंगे, उस दिन देखना केंद्रस की क्या अवस्था होती है। वह ठास कर उठा, मध्य का आधार लिए सम्मुख खड़ी दासी का बाहु पकड़कर इंद्रदीप ने उसे अपने अंक में खींच लिया और बोला, उस दिन केंद्रस की पत्नियां सामंत इंद्रदीप के अंक में इसी प्रकार शोभित होंगी। हा हा हा। दासी मग्गा इंद्रदीप के उन्मत्त व्यवहार से भयभीत होकर सिहर उठी। मल्लिका ने उंगली ऊठो पर रख इंद्रदीप को संकेत किया, ना आर्य, दासी को त्रस्त न करें। इंद्रदीप के समीप बैठा सामंत श्रीमुख शर्मा का पुत्र केदार शर्मा मल्लिका की वर्जना से खिन्न होकर बोला, इसी परवशता के लिए हम केंद्रस के खड़ग के आघात अपने शरीर पर सहेंगे। दोनों हाथ फैलाकर समर्थन के विश्वास में उसने सब लोगों की ओर देखा। हां कहो, एक दासी के सम्मुख भी सामंत कुमार विवश है? वह दासी से भी स्वच्छंद व्यवहार नहीं कर सकता? हमें दासियों की स्वीकृति का भी दास होना पड़े? दृष्टिजन सांगल के पथों और विधियों पर द्विज वर्ग से अस्पर्धा और अयोग्या करें? तंतुवाय और कम्मकार हमारे सामने आसनों पर बैठे? मद्रगण के ऐसे शासन में हमारा क्या है? उसी के लिए हम अपना रक्त बहाएंगे? क्यों श्रेष्ठ उदय भानु? केदार शर्मा ने उपाधान का आश्रय लिए स्थिर उदय भानु को समर्थन के लिए ललकारा। इंद्रदीप ने मल्लिका को संबोधन किया, देवी तुम जानती हो तुम्हारे कला की क्षमता की शपथ, देवी सरस्वती की शपथ। मुंडियों ने मद्र के भीतर से खाकर उसी प्रकार खोखला कर दिया है जैसे दीमक काष्ठ स्तूप को खा लेता है। राज्य के तृतीयांश निष्क्रिय मुंडियों ने से भरे बिहार की सेवा में व्यय हो जाने से शेष क्या रहेगा? मद्र केंद्रस का प्रतिरोध शस्त्रधारी सैनिकों से नहीं चीवर और भिक्षा पात्रधारी भिक्षुओं से करेगा? तथागत के मृगशावक मद्र की रक्षा करेंगे? आखेट के स्वान को भूखा रख मृगशावकों को पालने का परिणाम यही होता है। केंद्रस के खड़ का प्रहार सहने के लिए अरहत धर्मरक्षित को भेजो, स्थिवर चीवक को भेजो। वह ठास करने लगा। मल्लिका हास्य में योग न दे सके। इंद्रदीप को संबोधन कर उसने उत्तर दिया, आर्य, क्या पारस्परिक प्रतिद्वंदिता का परिणाम शत्रु के हाथ आत्मसमर्पण होगा? जब मद्र और सांगल नहीं रहेंगे किसका उपालब्ध कौन सुनेगा? पृथुसेन के लिए अधिक सहना संभव न था। दिव्या के चतुष्साल से उठ आने का संकेत कर वह कुंज निभित ताल की ओर चला गया। कुछ ही छड़ों में दिव्या संकेत का अनुवर्तन कर उसके पीछे चली गई। दिव्या का हाथ अपने हाथ में लेकर पृथ्वीसेन ने छोप से कहा, प्रिय, देख लिया तुमने? यह है युद्ध के लिए आयोजन। दुर्दांत केंद्रस मध्य की गिवा पर अपना निर्मम पद त्राण रखे है और मध्य के नायकों में यह षड्यंत्र चल रहा है। दिव्या ने अधीर होकर उत्तरीय से नेत्र ढक लिए। उसकी पीठ बाहू में लेकर पृथ्वीसेन बोला, इन लोगों की दृष्टि में आक्रमण केवल मुंडी धर्म के पाप का फल है। आचार्य प्रवर्धन संग्राम की ओट में वर्णाश्रम धर्म की स्थापना कर षड्यंत्र चला रहा है। कोई नहीं सोचता पुष्पमित्र हो या केंद्रस, मध्य में वर्णाश्रम धर्म की स्थापना के लिए कोई अपना रक्त बहाने नहीं आएगा। उन्हें प्रयोजन है अपने साम्राज्य विस्तार से, मध्य की भूमि के धन द्रव्य से। इनका विचार है केंद्रस मद्र विजय कर इनके ब्राह्मणत्व के जन्मजात अधिकार से इन्हें पूज्य देव मानकर इनकी पूजा करेगा। पराजित होने वाले कभी पूज्य नहीं होते। केंद्र स्वयं अपने आप को देवता समझता है। उसकी अपनी सृष्टि के लिए ही यह यज्ञ है। संपूर्ण सागल यज्ञ कुंड होगा। उसमें इन भूदेवों और सामंतों के शरीर और उनकी संपत्ति यज्ञ की बलि बनेंगे। बचेंगे केवल वे लोग जो अपना मनुष्यत्व खोकर केंद्रस के पाद त्राण की ठोकर को सम्मान समझेंगे। क्या वह बचेगा? क्या यह बचना है? इनके अंतःपुरों का चरण से भूमि स्पर्श न करने वाली कुलनारी समूह केंद्रस के विजयोन्मुक्त भूखे कामुक सैनिकों के लिए द्रक्षा के गुच्छों की भांति मोहक होगा। अभिजात और कुलीन होने का अभिमान करने वाले लोग दासों के भांति श्रृंखलाबद्ध फिरेंगे। विजय की लूट में सांगल की कुलनारियां और द्विज कुमारियां भय से चित्कार करती समेटी जाएंगी। सर्वनाश की उस अग्नि में हमारे जीवन की सब आशा समाप्त हो जाएगी। अपने विचारों को विभीषिका में आत्मविस्मित पृथुसेन की दृष्टि जलकुंड में दोलायमान तारों के प्रतिबिंब की ओर लगी हुई थी। दिव्या का हाथ उसके हाथ से छूटकर कटबंध में लगी कटार उसके हाथों में आ पहुंची। अपने मुख पर लगी दिव्या की दृष्टि पर ध्यान उसे न रहा। आत्मसात वह कहने लगी, मैं अब कल्पना करता हूं हमारे प्रज्वलित प्रसादों की ज्वाला के प्रकाश में विजय और मत्स्य मार्त दावशनिक तुम्हारे शरीर पर हाथ डालेंगे और मैं मेखला से बधा खड़ा होऊंगा। उससे पूर्व या तो मैं शत्रु के खंग से जीवन मुक्त हो चुका होऊंगा या अपने कटार से, परंतु अपने मृत्यु के पश्चात भी तुम्हारे लिए उस दारुण विभीषिका की कल्पना असहाय है। दिव्या के सिसकने के शब्द से विचार तंद्रा से जागकर पृथ्वीसेन ने उसे कटि से अपने बहुपास में सपेट कर आलिंगन में हृदय में ले लिया। दिव्या के मस्तक, कपोल और मुख के अनेक चुम्बन लेकर अपने मुख के सम्मुख उसका मुख हाथों में थाम कर पृथ्वीसेन ने संतावना दी, दिव्य भय और त्रास से क्या लाभ, जीवन के दो क्षण पूर्णतः से जीकर साहस में जीवन समाप्त कर दें। दिव्या को संतावना देने के प्रयत्न में स्वयं दिव्या के शरीर की सजीवता में आश्रय ढूंढने लगा। स्थिर दिव्या के मेरुदंड और कटी को अपने गूढ़ आलिंगन में और अधिक समेट लिया। दिव्या के कंचुक में बधे उरीज और हृदय की धड़कनों को आश्रय देने के लिए बढ़ाए थे। उसकी ठोड़ी दिव्या के केसों पर आश्रय पाई थी। पृथ्वीसेन का मस्तिष्क दिव्या के केसों की गंध की मधुर मूर्छा में विस्मित हो रहा था। युद्ध की भीषण रुद्र कल्पना का अग्र विभाग तेलहीन दीप शिखा की भांति क्षीण होकर दूर सुदूर हटता जा रहा था। परम कमनीय दृष्टि के लिए व्यग्र पृथ्वीसेन के प्राण ओठों पर आकर दिव्या के प्राणों के लिए विकल हो उठे। दिव्या के ओठों को पाकर वे उनसे पृथक होना न चाहते थे। उसके अवश्य हाथ दिव्या के उरूजों के नीचे स्पंदित प्राणों की खोज में उसके कुचुक पर चंचल हो उठे। दिव्या सिहर कर सिमट गई। आत्मसमर्पण की तुष्टि और आत्मरक्षा की प्रवृत्ति की दुविधा में उसके हाथ ने पृथ्वीसेन के हाथों को थाम लिया। पृथ्वीसेन ने दीर्घ निश्वास से संयत होकर अपने ओठ दांत में दबा लिए। क्षण भर के लिए उसकी दृष्टि में लिप्त युद्ध की विभीषिका फिर उसके सामने आ गई। स्थिर हाथ दिव्या के कंधे और कट पर रखे और दृष्टि जलकुंड में दुलायमान तारों के प्रतिबिंब पर लगाए। उत्तेजना की व्यर्थता से मुख में भर गई कटुता को निगल कर वह फिर बोला, दिव्य मैं मृत्यु से भय नहीं मानता। मृत्यु क्या है? अस्तित्व का अंत। जिसका अस्तित्व नहीं, जिसे अनुभूति नहीं, वह भय भी अनुभव नहीं कर सकता। भय है जीवित रहकर पीड़ा और पराभव सहने में। भय है जीवन भर की पीड़ा और पराभव से तुम्हें अंक में लेकर समाप्त हो जाने से कौन इच्छा पूर्ण रह जाएगी? फिर उसमें भय क्या? वह सुखद अस्तित्व का सुखद अंत है। परंतु मैं युद्ध में पराकांत होकर, पराभूत होकर, जीवन भर तिल तिल कर मरने की कल्पना सहन नहीं कर सकता। जीवन की सार्थकता अधिकार और सामर्थ्य में ही है। इन लोगों के लिए युद्ध षड्यंत्र की अभिसंधि पूर्ण करने का अवसर मात्र है। वे परस्पर एक दूसरे को शत्रु समझते हैं, परंतु जो वास्तव में सबका शत्रु है उससे सभी मित्रता और सहायता की कल्पना करते हैं। पुत्र शोक में संसार के व्यक्त महासेनापति के सम्मुख महाराज मिलिंद का आदर्श है। वे पहरो अहर्थ धर्म रक्षित से निर्वाण मार्ग के सुख की कल्पना सुनकर शांति पाते हैं। आचार्य संवाहक अपने पूर्वजों की भांति केंद्रस के मंत्रिपद की आशा में मध्य की भस्मभूत देखने के लिए तैयार हैं। नगर और गण के संपूर्ण प्रजा का जीवन इन लोगों के स्वार्थभूत कुचक्रों पर निर्भर है और इनके लिए स्वार्थ लाखों जनों के प्राण से अधिक प्रिय है। पृथ्वीसेन जलकुंड के तारा बिंबित स्तर की ओर दृष्टि लगाए रहा। पृथ्वीसेन का हाथ अपने चुंबक पर रख दिया। रख दिव्या ने अनुरोध किया, प्रिय तात के समीप जाओ, वे तुम्हारी ही भांति युद्ध के परिणाम की विभीषिका से चिंतित हैं। उन्हें मिलिंद द्वारा मध्य का ध्वस्त अपनी आंखों से देखा था। उनकी प्रतिज्ञा है उस नरकीय दृश्य को पुनः देखने के लिए उनका शरीर शेष न रहेगा। तात बहुत कुछ करने में समर्थ होंगे, महासेनापति उनकी अवज्ञा न कर सकेंगे, आचार्य भी न कर सकेंगे। अंधकार में दिव्या के नेत्रों में दृष्टि गड़ाकर पृथ्वीसेन बोला, प्रिय अब भी यदि अवसर मिले तो मैं बरबस के इंद्रज का अवरोध कर सकता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है, परंतु अवसर न होने से क्या कर सकता हूँ। दिव्या ने पृथ्वीसेन का हाथ अपने हाथों में पुनः लेकर आग्रह किया, प्रिय तुम तात के समीप अवश्य जाओ, एक बार जाकर देखो, मैं स्वयं उनसे निवेदन करूंगी। विलंब हो रहा है प्रिय, कंचुकी प्रतीक्षा कर रही है, चलूंगी। पृथ्वीसेन मल्लिका के प्रसाद के सिंह द्वार पर प्रतीक्षा में खड़े अपने अश्वरक्षक की उपेक्षा कर पैदल ही चला। राजपथ छोड़कर वह तंतुवायों की वीथियों से जा रहा था। वीथी प्राय निर्जन और जहां तहां साधारण स्थिति के भयने से पड़ने वाले प्रकाश के अतिरिक्त अधियारी थी। शिला मंडित पथ पर उसके पीछे आते घोड़े के सबल सूमों की आहट से वीथी प्रतिध्वनित हो रही थी। पृथ्वीसेन विचारमग्न चला जा रहा था। पृथ्वीसेन संकीर्ण वीथि से निकल लौहकारों के अपेक्षाकृत विस्तृत मार्ग पर आया। रात्रि के प्रहर पहले प्रहर पर्ण उठकर मार्ग प्राय निर्जन हो चुका था। केवल कुछ पर्णों पर क्षीण प्रकाश था, जहां से सस्ते मद की तीखी गंध आ रही थी। कहीं कहीं आग पर मांस और दूसरे खाद्य पदार्थ भूने जा रहे थे। एक स्थान पर प्रकाश अधिक था और जनरव का कोलाहल सुनाई दे रहा था। घोड़ों को सूमों की आहट सुनकर एकत्र समुदाय ने पृथ्वीसेन की ओर ध्यान दिया। उसका वेग देखकर कोलाहल सभ्रम रुक गया। समुदाय का ध्यान अपनी ओर आकर्षित होने से पृथ्वीसेन की विचार तंद्रा टूटी। उसे जान पड़ा उस कोलाहल में युद्ध का प्रसंग चल रहा था। कुछ आगे बढ़कर पृथ्वीसेन ने अपना बहुमूल्य वस्त्र उतार कर अश्वरक्षक को सौंप कर उसे अश्व सहित प्रसाद लौट जाने का आदेश दिया। उत्तरी से शरीर ढक कर वह अकेला चला। अब ध्यान देने पर उसकी ग्रीवा पर कुंचित केशों के बीच से दिखाई देने वाले कानों के बहुमूल्य कुंडल ही उसके अभिजात व्यक्ति होने का परिचय देते थे। लौहकारों के पर्ण के आगे वैश्याओं का चतुर मार्ग था। भवन के ऊपर के खंडों के आलिंद से नीचे मार्ग में एकत्र समुदाय पर प्रकाश पड़ रहा था। अनेक बालक बालिकाएं ऊंचे स्वर में पुकार पुकार कर प्रेमियों के योग्य कामी पुरुषों के योग्य सुगंधित पुष्पमालाएं बेच रही थी। एक बालक ऊंचे तीखे स्वर में भुने कोमल मांस का स्वाद चखने का निमंत्रण दे रहा था। मध्य के पर्ण में के सम्मुख एक वृद्धा एक मद्यप के अंगरखे को छोड़ थामे मूल्य के लिए विवाद कर रही थी। उन्हें चारों ओर से घेर कर दूसरे लोग हंस रहे थे। वृद्धा ऊंचे खिन्न स्वर में चिल्ला रही थी, नहीं नहीं, मूल्य पाए बिना मैं तुम्हें पर्ण में आने न दूंगी। तुम सैनिक बन गए हो तो मुझे इससे क्या, कल तुम दार्व चले जाओगे तो मैं मूल्य किससे पाऊंगी। क्या मध्य बिना मूल्य के बनता है? वाह जी, तुम बड़े छलिया हो, मूल्य साथ लिए बिना मध्य पीने आते हो। सैनिक बनकर तुम युद्ध में जा रहे हो तो मुझे क्या, तुम जिस सामंत के सैनिक बने हो, जिसकी रक्षा करोगे, उसी से मध्य भी लो। तुम दीन बुढ़िया के क्यों छलते हो? दो स्वर्ण मुद्रा तो राजपुरुष मुझसे संग्राम यज्ञ की विशेष बलि ले चुके हैं, तुम मध्य पीकर मूल्य नहीं देना चाहते? उस बुढ़िया की बात काट कर बोल उठा, संग्राम यज्ञ की विशेष बलि एकत्र करने में राजपुरुषों का धन खूब बढ़ेगा। बुढ़िया, तेरे दो स्वर्ण मुद्रा में से एक गणकोष में जाएगा और एक राजपुरुषों के घर में। केंद्र हमें क्या लूटेगा, उससे पूर्व मध्य के राजपुरुष ही हमें लूट लेंगे। अरे बुढ़िया, बलात् बलि देने लेने आने वाले राजपुरुषों को तू बिना मूल्य मद पिलाकर अनुग्रहित होती है और अपने समान दीन ग्राहकों को जल मिले घूट घूट मद्य का मूल्य दूना मूल्य मांगती है। बोलने वालों की पीठ पर हाथ मारकर उसके समीप बैठा मद्यप उन्माद से हंसता हुआ बोला, मित्र यह तो अनोखी बात है और यह अनोखी चाल भी है। कुत्ता कुत्ते को काटता है और मालिक के अन्न की रक्षा करता है, वैसे ही हम तुम राजपुरुषों की प्रसन्नता के लिए एक दूसरे का हनन करते हैं। मित्र, तुम्हारे कट में भी राजपुरुष की मुद्रा का पट्टा बध जाए तो जानते हो क्या होगा? तुम ड्योढ़ी पर बैठे कुकुर की भांति पथ पर चलने वाले कुकुरों पर गुर्राओगे। देखो, स्वयं खाने में उतना पुण्य नहीं जितना ब्राह्मण को खिलाने से है। जानते हो क्यों? ब्राह्मण देवता का कुकुर है। अंधकार में एक ओर खड़े पृथ्वीसेन ने बोलने वाले का स्वर विस्मय से पहचाना, मूर्तिकार दार्शनिक आर्य मारिस के केश और वस्त्र इतने अव्यवस्थित थे कि उसे पहचानना कठिन था। पृथुसेन सोच रहा था, अपदस्त और संपत्तिहीन हो जाने से मारिस की क्या अवस्था हो गई। उसी समय मूल्य देने में असमर्थ ग्राहक का अंगरखा खींचकर बुढ़िया ने पुनः झुझलाने से पृथुसेन का ध्यान उस पर गया। कोई बुढ़िया से कह रहा था, कृपणे, दीन नागरिक के प्रति इतनी निष्ठुर न हो। सैनिक सेवा के लिए सामंत के सैनिकों द्वारा बलात् धर लिए जाने पर यदि दुख में उसने दो चषक मद पी ही लिया तो क्या हुआ। एक अन्य वृद्ध मद्यप के एक हाथ में मिट्टी का पान पात्र और दूसरे में खाद्य लिए अपने स्थान से उठकर बोला, सखा सांडे, तेरे पान का मूल्य मैं दूंगा, तू पी और पी। उसने पात्र सांडे के मुख से लगा दिया। रिक्त पात्र पथ पर पटक कर वह बोला, क्या उपयोग है इस धन का, जो खा लिया जो पी लिया वही मेरा है। मैं दिन भर उग्रताप में बैठकर तलवारें गढ़ता हूँ, वही तलवार हाथ में लेकर राजपुरुष मेरे पुत्र को बलात् सैन्य दल में हाँक ले गए। मेरा पुत्र केंद्रस के खड़ का प्रहार सहने अदार बजाएगा और वाचक पुरोहित मेरे लिए राजबल के द्रव्य से मंत्रपूत सुरापान कर बलि के मांस का भोजन कर मंत्र पाठ कर रक्षक देवता का वाहन करेगा। महायोद्धा सामंत गौर और कृष्णवर्ण दासियों को अंक में लेकर सया रूढ़ होने का पराक्रम करेगा और खड़ के आघात से कांपता हुआ मेरा पुत्र कायर कहलाएगा। हाय, इससे तो वह श्रवण वन का दीर्घ जीवी होता तो अच्छा था। मद्यप दोनों हाथों से सिर थाम कर भूमि पर बैठ गया। सांडे बुढ़िया के हाथ से अपने अंगरखे का छोर छुड़ाकर वृद्ध के समीप बैठकर उसे सांत्वना देने लगा। तात, रोने से क्या, देव बली है, देव को बचाया है बचाता है, देव को मारा मारता है। मनुष्य के लिए क्या होता है, मैं स्वयं सामंत का भृत सैनिक हूँ, तुम्हारे पुत्र मेरी रक्षा में रहेगा। भृत सैनिक की सूरता जानते हो क्या है, मारते के पीछे भागते के आगे। बस सांडे की बात न सुनकर एक कर एक और मंडप बोलने लगा, अरे कोई आर्य मुझे एक पान का मूल्य दे। मेरे बाबा महाराज पौरव के लिए तलवारें गढ़ता था, मेरा पिता यवनराज मिलिंद के लिए तलवारें गढ़ता था, मैं मध्य के 200 राजाओं के लिए तलवारें गढ़ता हूँ। गढ़े खड़ग से साम्राज्य जीते जाते हैं, मेरे गढ़े खड़ग से राज्य शासन होता है, परंतु मुझे पर्याप्त पान के लिए मूल्य नहीं मिलता। कोई सखा मुझे एक पान प्राप्त करा दे। अनेक मध्यप किसी की न सुनकर अपने ही कह रहे थे, जो सबसे ऊंचा बोलता उसी की बात पृथ्वीसेन के कानों तक पहुंचती। एक पौड़ अपना पान पात्र आकाश की ओर उठाकर बोला, राजपुरुषों ने कल मेरे 3 अश्व संग्राम के लिए राजा अधिकृत कर लिए। अश्वराज श्रेष्ठ प्रस्थ कोष में प्रत्येक अश्व के लिए 5 स्वर्ण मुद्रा पाता है और मेरे 3 अश्वों के लिए केवल 4 मुद्रा। गण को संग्राम के लिए मेरे अश्वों की आवश्यकता है। सामंत सार्थवा 4-4 कंबोजी अश्वों से जुते रथों पर मार्ग घेर कर चलते हैं। मेरे अश्वों की गण को आवश्यकता है, सामंत के अश्वों की नहीं। वह ठास में हंस पड़ा। मद्यपान की भिक्षा चाहने वाले खड़कार ने उसके कान के समीप मुख कर खूब ऊंचे स्वर में परामर्श दिया, मित्र, 4 स्वर्ण मुद्रा का मद पियो, मित्रों को पिलाओ, सुंदरी वेश्या अलोमा के साथ शयन करो और फिर कासाय चीर धारण कर भिक्षा पात्र ग्रहण कर आशीर्वाद देकर उसके मूल्य में पेट भर अन्य ग्रहण करो। संसार माया है, तृष्णा में क्या रखा है, मित्र आओ पियो, खूब पियो, जमकर पियो, पी पी कर पियो। एक युवा मूल्य के लिए खिन्न वृद्धा को संतावना दे रहा था, कृपणे, आर्य नागरिकों को मध्य के लिए दूषित न कर, त्रिषित न कर। आए दिन केंद्रस के दस्यु तेरे मद के घटों को चूर्ण कर तेरा मद पीकर तुझ पर ही अत्याचार करेंगे। उसे बाधित कर दूसरा बोला, तू कल का बालक क्या जानता है, केंद्रस से क्या भय, गण के 200 राजुल्लों से एक राजा का शासन कहीं भला। सांगल में पुनः धर्मराज मिलिंद के समय की शांति हो जाएगी। उससे भी ऊंचे स्वर्ग में मार्ग पर लेटा हुआ एक युवक दुहाई दे उठा, मित्रों मुझे पिलाओ, मेरे जीवन का आज अंतिम रात्रि है। सामंत के राजपुरुष आज मुझे घेरने आए थे, मेरी चतुरा पत्नी ने कहा, मेरा पति कार्यवश तंतु आय के यहाँ गया है, कल आना, कल मैं धरा जाऊंगा। मित्रों मेरे जीवन की अंतिम रात्रि है, मुझे पिलाओ, मुझे पिलाओ। उसके समीप बैठा व्यक्ति उसकी जांघ पर हाथ मारकर बोला, मूर्ख, घृत सैनिक बनकर प्राण देगा, पलायन कर जा। सैकड़ों बज गए, कंठों के गढ़ में पलायन कर जा। वहां सामंतों का राज नहीं, वहां सब मनुष्य समान और स्वतंत्र हैं। कैसे पलायन कर जाऊं? विवश स्वर में युवक ने उत्तर दिया, मेरी पति प्रता स्त्री, मेरा सुकुमार बालक। पुरोहित कहता है, जो स्वामी सामंत की आज्ञा से विमुख है वह परलोक से हीन है। स्वान का जन्म पाकर दंड स्वरूप स्वामी की सेवा करेगा। इस जन्म में दुख पाया, परलोक भी बिगाड़ू? तीखे मरे का स्वाद ओठों पर चाट कर समुदाय में से मारिश बोला, मूर्ख, तूने और तेरे स्वामी ने परलोक देखा है? यह विश्वास ही तेरी दास्ता है। तू अपने पर विश्वास के अधिकार को स्वीकार करता है, यही तेरी दास्ता का बंधन है। तू संकट से पलायन कर रक्षा चाहता है, यही तेरी निर्बलता है। संकट सब स्थान और समय में तेरे साथ रहेगा। संकट का पराभव कर, पराभूत होना ही पाप है, उसका फल तू तत्काल भोगेगा। तू स्वतंत्र करता है, स्वतंत्र अनुभव करना ही जीवन है। पराभूत सजीव होकर भी मृत्यु है, निर्भय हो। जीवन के लिए युद्ध कर, मृत्यु भय का अंत है। जीवन में उत्तेजित हो, कायर मत बन। मारिश ने अपना पान पुत्र पुनः ओठों में लगा, एक घूंट कातर युवक के हाथों में दे दिया। रोते हुए वृद्ध का बाहु अपने ग्रीवा से हटाकर सांडे ने मारिश को संबोधन किया, किसके लिए युद्ध करें, किसके लिए प्राण दें? सामंत सावर्थ के प्रताप के लिए, आचार्य प्रवर्धन के यज्ञ के लिए, मुंडी धर्मरक्षितों के लिए? हमारा क्या जाता है, किसका सांगल, किसका मद्र? जिसके कर्म के भोग से सेवा ही करना करना वह सभी की सेवा कर सकता है। मारे के भीगे ओठ पर चाट कर मारिश ने उत्तर दिया, तू भी मूर्ख हो। तुम समझते हो सेवा करने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, वही तुम्हारा भाग्य है। दूसरे के स्वार्थ साधन के लिए तुम मनुष्य नहीं बने हो, उस कार्य के लिए पशु है। अपने लिए लड़ो, सामंत और आचार्य अपने लिए लड़ते हैं, तुम अपने लिए लड़ो। अपने अन्न के लिए, अपने वस्त्र के लिए, अपने मारे के लिए, उस स्त्री के लिए जिसे अंक में लेकर सुख पाते हो, उस संतान के लिए जिसे अपने आप को जीवित पाते हो। मरना तो है ही, अपने मनुष्यत्व और अधिकार के लिए मरो। जो बिना विरोध किए दूसरे के उपयोग में आता है वह जड़ और निर्जीव है, पशु से भी हीन है। तुम सामंत के राज में आधे मनुष्य हो, पूर्ण मनुष्य बनने का यत्न करो। निराशा में शैथिल्य से पशुतत्व मत स्वीकार करो। केंद्रस बर्बर है, वह उस धन का प्यासा है जो धन तुम्हारे जीवन का आश्रय है। जो मरता है वह सबल है, जो भय करता है निर्बल है। मारिश उठा और एक ओर चल दिया। एक मत का ध्यान पृथ्वीसेन की ओर आकर्षित हुआ। मदप ने संबोधन किया, तुम शिथिल और मौन क्यों हो सके, तुम भयभीत हो। मारिश कहता है, भय मिथ्या है, किससे त्रस्त हो? युद्ध से भयभीत हो जाओ, किसी दुज कुलपति के दास बन जाओ, किसी सामंत के दास बन जाओ। राज पुरुष तुम्हें स्पर्श न कर पाएगा। अपनी पत्नी से खिन्न हो जाओ, वेश्या अलोमा के समीप जाओ। वह नागदंत की भात सुचक्रण है, अलोमा लोभी नहीं है। आओ सखा, पान की गोष्ठी में परिचय मित्रता का सूत्र बांधे। अपना जूठा कुल्हड़ उसने मृदुसेन के मुख में लगा दिया। मृदुसेन पात्र मुख से हटाकर अंधेरे मार्ग की ओर बढ़ गया। वृद्ध खड़कार के रोने का शब्द उसे दूर तक सुनाई देता रहा। प्रतीक्षा में खड़े दास ने प्रतिशोध को सैन कक्ष का मार्ग दिखाया। वह अनमयस्क अवस्था में पर्यक पर बैठ गया। दीघ शिफा पर मडराने वाले सलभों की भांति कितनी ही चिंताएं अनेक दिशाओं से आकर उसके मस्तिष्क में घुस जाती। सांगल पर बढ़ा आता दुर्दिश शत्रु, उस संकट के कारण छाया आतंक, अभिजात समाज का षड्यंत्र, जन का असंतोष और उपेक्षा, अभिजात समाज की उपेक्षा, इन सब का क्या परिणाम होगा? दिव्या का शिथिल होकर उसे उसके अंक में आत्मसमर्पण, फिर उसका सिहर कर वरस देना, इतना स्नेह और वरस देना क्यों? परंतु क्या उनका विवाह संभव होगा? उससे पूर्व केंद्रस के आक्रमण से क्या हो जाएगा? वह सांगल छोड़ जाए, मारिश का कहना ठीक ही था। केंद्रस का अवरोध कौन करेगा? जन की सहायता बिना कैसे वह संभव होगा? वह कोमल उपाधानों की अपेक्षा कर हथेली पर डोड़ी ठिकाए चिंतामग्न बैठा रहा। उसकी पीठ पीछे खड़ी दासी उसके अनजाने में ही व्यजन से मद बतास कर कच्छ की उष्मा और पावस से उत्पन्न मच्छरों को दूर किए थी। आर्य, प्रतिसेन ने माथा उठाकर देखा, दासी वापस सम्मुख खड़ी थी। प्रतिसेन के मौन प्रश्न के उत्तर में दासी ने निवेदन किया, स्वामी ने आयुष्मान के मंगल के प्रति जिज्ञासा की है, आयुष्मान का स्वास्थ्य ठीक है, चित्त प्रसन्न है। दीर्घ निश्वास लेकर प्रतिसेन ने उत्तर दिया, तात से मेरा प्रणाम निवेदन करो, मैं स्वस्थ हूँ। सैया पर लेट कर उसने कहा, प्रकाश नहीं चाहिए। कच्छ के भिन्न भिन्न स्थानों पर जलते हुए सुगंधित तेल के 5 दीपों में से दासी ने 4 बुझा दिए। केवल एक दीप शेष रह गया, जिसका प्रकाश पर्यक के नीचे विछे स्थानों पर पड़ रहा था। प्रतिसेन के निश्चल देखकर वापी चली गई। व्यंजनधारी दासी आहट किए बिना प्रतिसेन की दृष्टि की ओट होकर हवा करने लगी। प्रतिसेन करवटे लेकर सिर के नीचे बाहु रखकर अनेक प्रकार से लेटा, परंतु निद्रा न आई। एक घड़ी बीत गई, द्वारों और गवाक्षों में कक्ष के झंझावत आने लगा, फिर वर्षा का शब्द और वायु में जल की शीतलता। स्वयं शीतल वायु आने से व्यंजनधारी दासी व्यंजन एक ओर रख निश्चल खड़ी थी। कुछ समय पश्चात दासी ने पर्यक के समीप उपस्थित आधार से दुकुल लेकर प्रतिसेन का शरीर ढक दिया। वर्षा और वायु की शीतलता प्रतिसेन के विचार विक्षोभ से उत्तप्त मस्तक को शांति दे रही थी। उसने शरीर से दुकुल हटाकर करवट ले ली। कुछ और क्षण पश्चात उसने दुकुल पुनः शरीर पर खींच लिया। पर्यक ग्रहण करने के पश्चात आर्य को इतने समय तक निद्रा न आती देख दिशा ने अलिंद में जाकर प्रतिहारी दासी को निद्रोपचार के योग्य दासी प्रस्तुत करने का आदेश दिया। छिले हुए कदली की समान स्निग्ध और वर्ण दासी ने निःशब्द पदों में कच्छ में प्रवेश किया। उसका वेश और रूप रुचिर था। ग्रीवा में एक मुक्तावली और 9 स्फुटित मालती कुसुमों की मालाएं गुलाबी काशीय पट से पीछे बांधे सुगोल उरुजों पर झूल रही थी। निरावरण छिड़ोदर की तिवली से कट की ओर उठता हुआ वार्तुल उभार कट पर पीत कौशेय का साटक मुक्तावली की मेखला से संभला हुआ प्रतीत हो रहा था। उसके कोमल बाहुओं पर मुक्तावली के अंगद और वलय थे। उन मुक्त सुगंधित केश मुक्तावलियों से गूथे हुए थे। शरीर पर कठोर स्पर्श सवर्ण आदि धातु नहीं, केवल शीतल सुखद स्पर्श मुक्ता थी। एक ओर करवट लेने पर प्रतिसेन की दृष्टि दासी पर पड़ी। दासी उसके चरण संभालने के लिए झुक रही थी। प्रतिसेन को करवट लेते देख कर दासी ने उसकी ओर देखा। दासी के ओठों और दीर्घ नेत्रों में दुविधा का भाव था। स्वामी के संतोष के लिए वह मुस्कुराए और संवेदना में गंभीर बनी रहे। दासी के उस दुविधा भाव से प्रतिसेन का को उलझन से अनुभव हुई। उसने दासी की ओर दृष्टि हटा ली। दासी उसके चरण दबाने लगी। उस समय स्पर्श से सुख अनुभव न कर प्रतिसेन ने पांव खींच लिए। दासी ने अनुमान किया, आर्य शीत अनुभव कर रहे थे। एक और दुकुल आधार से लेकर उसने स्वामी के शरीर पर फैला दिया। शरीर एक दुकुल से ढका रहने के कारण प्रतिसेन शीत अनुभव न कर रहा था। दूसरा दुकुल शरीर पर आ जाने से उसने दासी की ओर देखा। द्वार से फरफर कर भीतर आती शीतल वायु में उसने निरावरण शरीर पर रोम खड़े थे। स्वामी के विनोद के लिए उसका शरीर निरावरण था।